ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस भोजन थाली नाम के स्थान पर आप सबका स्वागत है। ये काम्य मन की बहुत सुंदर स्थली है। यहाँ पर बहुत सारी कथाएं हैं। इंद्रसेन नाम का नाम भूल जाइए, एक बहुत बड़े राजा थे और उनको एक कन्या थी, वो भी शतरानी थी, बहुत शूरवीर थी और अपने पिता के साथ में उसने बहुत युद्ध खेले थे और बचपन से हर युद्ध में वो जीतते आ रहे थे, कभी परास्त नहीं हुए। बचपन की जवानी हो गई, युवा अवस्था में आ गई, वो तब भी जीतते गए जीतते गए जीतते गए। एक युद्ध ऐसा आया कि उसके पिता हार गए। तो क्या हुआ, बड़ी वो डिप्रेशन में गई, वो बहुत 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 पीड़ा हुई, क्योंकि पराजय होने की आदत नहीं थी ना, इसलिए पराजय भी बहुत आवश्यक है। पराजय अच्छा रहता है, आदमी को नम्र बनाता है और एकदम क्या कहते हैं उसको, संतुलित बनाता है आदमी को। पराजय से जय की कीमत पता चलती है और पराजय से आदमी की बहुत वृद्धि होती है। जय से विजय प्राप्त करने से मनुष्य की वृद्धि होगी ही, इसका गारंटी नहीं है। मनुष्य की आंतरिक वृद्धि जो है वो पराजय से आरंभ होती है उसका। जब पराजय होता है तो आदमी बहुत सीखता है, जीत से बहुत कम सीखता है, हार से बहुत ज़्यादा सीखता है। तो जब इतने सालों का जीतने का आदत थी उसको, तब जब हार गई तो टूट गई, वो झेल नहीं पाई उसको, इतनी टूट गई वो कि उसके पिताजी मारे गए, फिर वो अकेली रह गई, तो एकदम विरक्त हो गई वो। अचानक उसको लगने लगा कि सारा संसार झूठा है, कुछ भी अर्थ नहीं है उसके अंदर, तो विरक्त हो गई वो। सब लोग सुन रहे हैं क्या? ऐसे ही देखते एक कथा समाप्त हो जाएगी, तब तक लड्डू खाते रहना आप। तो वो एकदम विरक्त हो गई और उसने सब कुछ राज सब त्याग करके तपस्या किया, और तपस्या करने पर उसको भगवान ने दर्शन दिया। तब तक वो सब इस दुनिया के लाभ हानि से मुक्त हो गई थी, वो जय अपराजय जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के परे जा चुकी थी। जब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं आपकी सेवा में एक शिला बनना चाहती हूँ। देखो हम लोग सोचेंगे ऐसे, आप कहेंगे एक माइक्रोस्कोप आ जाए, ऐसे सोचेंगे आप। वो बोल रही है मुझे पत्थर बनने दो, तो वो यहाँ पर शिला बन गई। उनकी इच्छा थी कि मैं जो शिला बनूंगी उस शिला में आप बैठकर भोजन करेंगे, ये मेरी इच्छा है। तो वो इंद्रसेन शिला बन गई यहाँ पर, उसके शिला का नाम इंद्रसेन है, शायद उसके पिताजी का नाम इंद्रसेन था, तो वो इंद्रसेन नाम की शिला बन गई और उसमें कटोरे और थालियाँ बन गई और उसमें भगवान ने भोजन किया है। भगवान रोज यहाँ पर आकर बाल बाल के संग गाय चराते हुए यहाँ उसके शिला में बैठ के भोजन करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा भोजन स्थली, या भोजन थाली भी कह सकते हैं। भोजन थाली बनी हुई है और भोजन स्थली भी है कि इस स्थल पर आकर भगवान भोजन करते हैं। तो ये वत्सपाल लीला का समय है। एक है गोपाल लीला और एक है वत्सपाल लीला, क्या फर्क है उसके अंदर? जो छोटे बालक है ना गाय के, बछड़ा बछिया, उनको जो लालन पालन करने का चराने का समय था उसको वत्सपाल लीला कहते हैं। वत्स यानी छोटे बछड़े और छोटी बछिया, और गोपाल मतलब जब भगवान 5 साल की आयु पूर्ण किए तो उस वर्ष के कार्तिक महीने के वद्य अष्टमी के दिन, शुद्ध अष्टमी के दिन उनको बड़े गायों का जिम्मेदारी सौंपा दिया गया चराने के लिए। उसके पहले 3 साल की उम्र में उनको छोटी गाय और बछिया चलाने का सेवा दिया गया था। तो छोटी गाय चलाने का जो समय था उस समय की लीला यहाँ की है। काम्य वन में अधिकतर भगवान की बाल लीला है और श्रृंगार लीला है, कुछ कुछ जगह पर वात्सल्य लीला भी है। तो यहाँ पर भगवान एक बार, जब रोज आते थे एक बार, हर रोज नया नया खेल खेलते हो, हम और आप बचपन में जो भी खेल खेले ना, वो सब खेल कृष्ण भी खेले हैं। जैसे आंख मिचोली, चोर पुलिस, घर घर खेलते हैं हम लोग ना, घर बनाते हैं, लुका छुपी, क्या चाहिए, गोटी, गुल्ली डंडा, सब भगवान खेले हुए, पतंग, सब लीला भगवान ने किया है। तो एक बार यहाँ पर आते हैं और तय करते हैं कि हम लोग भी तीन पार्टियां बनाएंगे, कुछ ग्वाल बाल बकरी बनेंगे, ऐसे ड्रामा में, खेल खेल में, कुछ ग्वाल बाल चोर बनेंगे और कुछ ग्वाल बाल पुलिस बनेंगे। चोर बने हुए ग्वाल बाल जो है, जो बकरी बने हुए ग्वाल बाल की चोरी करेंगे, वो पुलिस बनने वाले जो है वो उनको पकड़ेंगे और दंड देंगे। तो खेल शुरू हुआ, तो उन तीन ग्रुप हो गए ना। तो चोर वाले ग्रुप में एक राक्षस ग्वाल बाल बनकर घुस गया, समझ में आया आपको, चोर वाले ग्रुप में। हाँ, एक देखो कैसे दुष्ट होते राक्षस। उस दिन एक ग्वाल बाल नहीं आया था, किसी वजह से एब्सेंट हो गया वो, उसी का रूप धारण करके आया वो, और वो चोर वाले ग्रुप में घुस गया और सारी बकरियां बनने वाले जो ग्वाल बाल है उनको चुरा चुरा करना एक गुफा में बंद करने लगा। प्रभु जी ने बताया ना कल प्रवचन में। हाँ, तो वो अचानक देखा कि अरे सब ग्वाल बाल की संख्या कम होती जा रही है, बकरियां जो पकड़ के दिखना चाहिए सामने पकड़े हुए चोरी किए हुए, लेकिन नंबर कम होते जा रहे हैं। तब भगवान बलराम जी ने चर्चा किया, क्या हो रहा है, बकरियां कम क्यों हो रही हैं। भगवान ने कहा कि वो देखो, वो जो है ना वो ग्वाल बाल नहीं है, वो राक्षस है, उसकी आंखों को गौर से देखो, लाल लाल उसे क्रूर आंखें उसकी, हमारे ग्वाल बाल का देखो कितनी कोमल आंखें हैं, बहुत निष्पाप ऐसी, इसको देखो कैसी आंखें हैं उसकी, क्रूर आंखें, ये राक्षस है, यही हमारे बालकों को चुरा रहा है, इसको दंड देना चाहिए। तो भगवान पीछे से गए और उसको जैसे ही एक छलांग लगाई उसके ऊपर, तो उसने अपना भयंकर रूप दिखाया, वो था व्योमासुर। यहाँ पर लोग उसको भौमासुर कहते हैं, लेकिन वो है व्योमासुर। व्योम यानी इथर, अवकाश। पंच महाभूत में क्या क्या है बताइए, पहले नीचे से आओ ऊपर ना, पहले नीचे से ऊपर आओ, पहले पृथ्वी, उसके बाद में जल, उसके बाद में वायु, उसके बाद में अग्नि, उसके बाद में अवकाश। मतलब सबसे स्थूल जो है वो पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म जल, उससे सूक्ष्म वायु, उससे सूक्ष्म अग्नि, उसके सूक्ष्म अवकाश या आकाश, स्पेस। ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो हमारा ही नहीं जितने भी जीव हैं वो सबका शरीर इस पांच तत्वों से बनाया गया है। तो ये व्योम जो है ना, व्योम का मतलब है अवकाश, स्पेस। तो व्योमासुर ने जैसे अपना रूप प्रकट किया, भगवान ने भी अपना अकराल विकराल रूप धारण कर दिया। सब ग्वाल बाल यहाँ खेल रहे हैं, अभी अचानक खेल के अंदर पता नहीं क्या होता है, इधर उन दो भयानक शरीर वाले प्रकट हो जाते हैं, उनका युद्ध शुरू होता है। आप पीछे देख रहे हैं, एक पहाड़ है पीछे, दिख रहा है आपको पीछे, एकदम मेरे डंडे की दिशा में, नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं, अभी इधर आ गया। हाँ ठीक है, इसके पीछे मेरा डंडा जिस दिशा में है ना, उधर एक पहाड़ है, उधर उनका युद्ध शुरू हुआ, और मेनली उनका युद्ध आकाश में हुआ, जमीन पर नहीं हुआ। वो जमीन पर आते थे, छलांग लगाते थे, फिर आकाश में उड़ते थे, फिर वापस जमीन पे आते थे, सब भयंकर युद्ध शुरू हुआ उनका। इतना भयंकर युद्ध था कि सारे ग्वाल बाल ऐसे एकदम दब के बैठ गए, सारे देवता प्रकट हो गए आकाश में, वो भी ऐसे डर डर के छुप छुप के देख रहे, भयंकर युद्ध हो रहा था। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पृथ्वी कांपने लगी भय से, उनके युद्ध से नहीं, वो युद्ध देख के भय हो रहा था उनको, तो कांपने लगी। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने अपने एक बाएं पैर के बड़े अंगूठा होता ना, आड़ा अंगूठा, उससे पृथ्वी को दबाया और अपना उत्तरी वस्त्र है ना वो पृथ्वी पर फेंक दिया और पृथ्वी को शांत किया, इस भावना से डरो नहीं मैं हूं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से पृथ्वी को आश्वस्त किया, डोंट वरी। तो पृथ्वी स्थिर हो गई, बलराम जी ने स्थिर कर दिया उसको, और इन लोगों का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वो गोल गोल आकाश में मंडलाकार घूमते हुए ऐसे छलांग लगाते थे, कभी पृथ्वी पर, कभी आकाश में, कभी जोर से उठते कूदते थे, कभी ऐसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ उनका। तो भगवान उस पहाड़ पर कई जगह पर ऐसे छलांग लगाया भगवान ने, कभी हाथ के बल पर ऐसे आए वो, कभी घुटने के बल पर आए, कभी उनकी माला भी ऐसे। तो ये तो लीला है भगवान की, तो पहाड़ भी पिघल रहा है। जहां भगवान ने छलांग लगाई हाथ के बल पर तो हाथ के निशान बन गए, यहाँ पर घुटने के बल पे छलांग लगाए तो घुटने के निशान हो गए, पैर के लगे तो पैर के हो गए, और माला के भी निशान बन गए उधर। आखिर भगवान ने भयंकर युद्ध में भीमासुर का वध कर दिया। फिर भगवान उसी पहाड़ के गुफा में गए जहां पर उन्होंने बालक को पकड़ना, गुफा में डालना, और एक बड़ी शिला से गुफा के दरवाजे को बंद करना। कल प्रभु जी ने बताया ना सुंदर कितना, वो जो पत्थर है ना जिससे बंद कर रहे हैं, वो माया का अस्त्र है, जिससे इस दुनिया से भगवान के साथ जितने भी हम लोग बालक हैं उसको उठा उठा कर माया जो है भौतिक दुनिया के गुफा में बंद कर रही है, और ऊपर से दरवाजा भी बंद कर रही है, और हम लोग वहां पर तड़प रहे हैं, संसार दावा नल्लित लोका। तो फिर कृष्ण भगवान ने आकर वो शिला हटाई और सब बकरी बने हुए ग्वाल बालों को मुक्त किया और दोबारा यहाँ पर लेके आए। फिर यहाँ पर सब लोग ने मिलकर भोजन किया हुआ है। तो वो जो पर्वत है उसके अंदर भगवान के माला के निशान है, भगवान के हाथ के निशान है, भगवान के घुटने के निशान भी है, लेकिन वो पहाड़ बहुत दुर्गम है, इतना आसान नहीं है। सुबह आप जाएंगे ना तो शाम तक आप सबका दर्शन हो पाएगा, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, वन वे है उधर पूरा, एक आदमी जाएंगे ऊपर नीचे आएंगे तो ही वो दूसरे आदमी चढ़ सकते हैं, और बहुत स्टीप है और बहुत डेंजरस है, साइड में कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है, और गुफा बहुत गहरी गुफा है, उसमें भी सांप की तरह अंदर जाना पड़ता है, बैठ के जाएंगे और अंदर जाएंगे तो सांप की तरह बहुत गहरी गुफा अंदर है, आप बैठ सकते हो खड़े नहीं हो सकते, तो बहुत सुंदर गुफा है वो, उसको व्योमासुर की गुफा कहते हैं। और उधर रास्ते पर पहाड़ के शुरू होने के पहले रोड पर एक स्थान है जहां पर बलराम जी ने पृथ्वी को अपने अंगूठे के बल से और अपने दुपट्टे के बल से शांत किया है, वो बलराम की चरण 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 चिन्ह है, हो गया ना सब चिन्ह। फिर उसी पहाड़ पर एक फिसलीनी शिला है जहां पर कृष्ण बलराम और बालकों बालक लोग हैं रोज उसमें फिसलते करते थे, उसको स्खलन शिला कहते हैं, तो स्खलन लीला भगवान करते थे, फिसलीनी शिला। कहा जाता है कि उसमें 7 बार फिसलने से इस दुनिया में वापस जन्म लेना नहीं पड़ता है, भगवान के खेलने की स्थित जगह है वो। और उसका विशेष महत्व ये है कि हमारे हमारे भक्ति के शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि हमको सभी लोगों को एक दिन बालक जैसे हृदय को प्राप्त करना चाहिए। क्यों, क्या कारण है उसका? जब बालक थे तब बड़े होने के लिए तमन्ना रहती कि कब बड़े हो जाएंगे, कब अपने आप कमाएंगे, अपने आप मन मर्जी करेंगे, ये पापा का सुनना, मम्मी का सुनना, बड़े भाई का सुनना। जब बालक है हम लोग तो हमेशा यही विचार करते कब बड़ा हो जाऊंगा, कब 20 साल का हो जाऊंगा, कब जवान हो जाऊंगा, कब आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, कब पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, ये स्कूल कब बंद हो जाएगा, फिर केवल स्कूल की एग्जाम खत्म हो जाएगी। लेकिन बालक बनने के बाद, बड़ा होने के बाद में साधु कहते हैं कि आपको बालक बनना है, यह क्या बात हुई? हर समय जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं होते हैं, जो हमारे पास जिस समय नहीं है वही हमको चाहिए होता है, जो चाहिए होता है वो मिल गया फिर वो हमको चाहिए नहीं होता है, जो नहीं चाहिए नहीं है वो चाहिए होता है। कितनी गड़बड़ गड़बड़ है ना बहुत यहाँ पर। हाँ, जो चीज़ हम चाहते हैं तो तड़पते हैं उसके लिए, और जो वो जो चाह चाह के तड़प तड़प के मिल जाती है तो कुछ समय के बाद में बोलते हैं अभी क्या है, अभी जो नहीं है वापस उसके पीछे भागते हैं, उसको ऐसे जेब में रखते हैं और दूसरा जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागते हैं। यही जीवन का पूरा खेल है हमारा, जो है उसमें खुशी नहीं है, जो नहीं है उसके लिए तड़प रहे हैं, जो नहीं है वो मिल जाता है तो वो भी एकदम बेकार हो जाता है। हम खुद भी ऐसे ही हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे बालक जितने भी है, जब नहीं है तो तड़पते हैं और आ गए फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, है ना। अभी जब गरीब थे तो धन के लिए तड़पते थे, जब धन आ गया तो धन की वजह से जो निर्माण होते हैं ना कष्ट, इनकम टैक्स, ये वो, इन लोगों की ईर्ष्या, एनवी, उसके लिए तड़पते रहते हैं। जब धन नहीं था तब उसके शांत थे हम लोग, कोई तकलीफ नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई वैर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, कुछ नहीं। और धन आया तो ये सब शुरू हो जाता है, ना गरीबी का सुख ना अमीरी का सुख, सुख किधर है, है ही नहीं सुख यहां पर। लगता है आएगा आएगा, लेकिन छोटी गाड़ी है तो दुख, बड़ी गाड़ी आए तो पत्थर मारा इसलिए दुख, एक्सीडेंट हो गया इसलिए दुख, है ना, ऐसा है। नया मोबाइल आया तो गिर गया हाथ से तो कांच टूट गया इसलिए दुख है, और नया मोबाइल आया तो इसके पास मुझसे बड़ा बड़ा मोबाइल है तो मेरे पास है उसकी खुशी नहीं है, उसके पास इसलिए दुख है, उसको के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। भला उसके कपड़े की सफेदी मुझसे अधिक कैसी, निर्मा है ना, भला उसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसी, भला उसके पास मुझसे अधिक पैसे कैसे, भला उसके पास मुझसे अधिक सुंदर बीवी कैसी, ये सभी हमारा विचार है। सुख तो केवल भगवान के चरणों में, इसलिए भगवान का सहारा लेना चाहिए। सारे जो द्वंद्व है ना हमारे, ये नहीं है ये है, उसका जो है नहीं का दो तकलीफ है ना, सब समाप्त हो जाता है जब भगवान के चरणों में आ जाते हैं। सब चीजों का जो असार स्वरूप है ना, असार मतलब यूजलेस स्वरूप जो है ना, उसकी जानकारी होती है हमको भगवान की भक्ति करने के बाद। संसार कितना असार है, कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं बेफजूल की बातों में, कैसे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसका अनुभव तभी होता है जब आप भगवान के खुद भक्त बनते हो, है ना। जब होता है ना वो गटर में हम लोग दारू पी के पड़ जाते हैं और उसको क्या लगता है, मैं तो स्वर्ग में सोया हूँ, इससे बढ़िया दुनिया में जगह नहीं है, ये जो घर में घर रहे उनको क्या पता कि इसमें कितना आनंद है। लेकिन जब नशा उतर जाती है तो सुबह बाहर आता है तो बाप रे कहाँ पर पड़ा हूं मैं, और फिर स्नान करके कपड़े बदली करता है और दोबारा गैलरी से उस गटर को देखता है जिसमें वो रात भर सोया था, कितनी घृणा उत्पन्न होती है उसके मन में, बाप रे इधर सोया था मैं रात को। लेकिन वो समझने के लिए उसको गटर से बाहर आना होगा पहले, तो उस जगह की गंदगी की जो एहसास है उसको होगा, जब तक उसके अंदर है तब तक नहीं होगा। तो हम लोगों को ये सब जानकारी करने के लिए ना बाहर आना होगा संसारिक प्रपंच से, तब आध्यात्मिक जीवन में क्या आनंद है उसका थोड़ा 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 टेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन जब तक उसके अंदर घुसे हुए हैं ना तब तक समझ में नहीं आएगा आपको कुछ। तो इसलिए वो मैं कह रहा था ये सब बातें फिसलनी पहाड़ी के रूप कथा में बता रहा था। वहां पर कहा गया कि जो बालक बनना, इतनी तपस्या के बाद में साधु लोग बालक बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने वहां पर बड़ी आसानी से बड़े 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 पदाधिकारी लोगों को बड़े आसानी से बालक बनते हुए देखा है उस फिसलनी शिला में। जो गंभीर होते हैं कभी हंसते नहीं हैं, हम लोग कितना भी जोक कहेंगे कथा में लेकिन मुंह से उनकी लकीर भी नहीं हिलती है, ऐसे लोग भी वहां हंसने लगते हैं, ये मैंने देखा हुआ है। बड़े ऊंचे पद के प्रिंसिपल, कोई अधिकारी, डायरेक्टर, कोई डीन, कोई ऐसे लोगों को हमने, बड़े बुजुर्ग, जो एक बुजुर्ग होने का भी एक होता है ना कि मैं तो छोटी छोटी हूँ, मैं बाली थोड़ी हूँ, मैं तो 60-70 ईयर्स की लड़की हूँ, ऐसा औरत हूँ तो सही है, मैंने बोला 70 ईयर की लड़की बनना चाहिए हमको, तो हमको लगता ना कि मैं थोड़ी, ये सब लड़कियां नाच रही हैं मैं कैसे नाचूं, मैं तो 70 साल की बुढ़िया हूँ, मैं तो बच्चों का खेल है हमारा नहीं काम, ऐसा एक मन में होता है ना। मैं बुजुर्ग होने का भी एक होता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, वृद्ध हूँ वगैरह वगैरह, किसी को लगता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं बड़े पद पे हूँ, अधिकारी, बड़ा पावरफुल व्यक्ति हूँ, तो मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मेरा काम सबको डांटने का है, मैं कैसे हंस सकता हूँ, अगर मैं हंसूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मुझे डरेंगे नहीं मुझसे, इसलिए मैं गंभीर ही रहूंगा हमेशा ऐसे रहूंगा। ये सारे प्रकार का जो खोखलापन होता है ना, सूखापन और खोखलापन, फिसलनी शिला पर समाप्त हो जाता है, फिसल जाता है। भगवान का भी एक नाम है फिसल चंद्र, ऐसा है। हाँ कैसे ना, वो एक भक्त था, उसको भगवान का नाम बताया गया कि आप जप करो उसका नाम। तो बड़ा बेचारा बहुत दिन से कभी भक्ति में नहीं आया था, वो नई नई भक्ति कर रहा था, तो ना वो भूल गया भगवान का नाम और वो फिसल चंद्र पुकारने लगा उसको। तो ऊपर राधा कृष्ण बैठे हैं, बोले क्या पुकार रहा है ये किसान, नहीं सही पुकार रहा है वो, कैसे सही पुकार रहा है, अरे मेरा नाम फिसल चंद्र है, क्योंकि जब मैं बालक था तो मैया मुझे बहुत बढ़िया श्रृंगार करती थी, और मैं बालक हुआ करता था, इतना श्रृंगार करके बाहर निकलते ही तुरंत जाके गौशाला में पिसल जाता था। तो मैया परेशान हो गई, बोले तुम्हारा नाम पिसल चंद्र है, तो कृष्ण चंद्र नहीं है, तो फिसल चंद्र है। ये कथा कृष्ण भगवान राधा को सुना रहे हैं, ये किसान की कथा, किसान के पुकार सुनकर। बहुत रोचक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। तो ये भगवान के बहुत चटपटे नाम केवल यहाँ मिलेंगे आपको, वैकुंठ में नहीं मिलेंगे। नारायण, ऐसे बहुत सारे वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, बहुत गंभीर नाम होते हैं। अपने को तो रस नहीं आता है उसके अंदर, लेकिन रस इसमें आता है, फिसल चंद्र, कनुआ, बलुआ, हाँ है ना, चोर, माखन चोर, ऐसे चटपटे नाम यही मिलते हैं, उसमें रस है बहुत आनंद का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिसलनी शिला जो है बड़े बड़े दिग्गजों को बालक बना देती है, क्योंकि बालक भगवान ने वहां पर बड़े आनंद की लीला की थी फिसलने की। और ऊपर आप जब लोग भाग रहे थे ना, क्या है क्या है उसके अंदर, मैं कह रहा हूं मत जाओ, मैं बताऊंगा तब जाओ आप उसके अंदर, क्योंकि आप देखेंगे क्या है, ये तो पत्थर में क्या बना है, उसे प्लेट बना कर रखा है, वाह वाह गुड गुड, उधर क्या है, उधर भी प्लेट बना कर रखा है, पता नहीं क्या है, वो कौन है मालूम नहीं। ऐसा करके टाइम पास करके आप लौट के आएंगे, अब जाके वापस सुन देखेंगे ना, अब सारा अर्थ समझ में आएगा आपको। वो इंदु सेन शिला है, उसमें वो तपस्या करके शिला बनी हुई है, उसके अंदर कटोरे और थाली बनी हुई है, वहां भगवान भोजन करते थे, तब आपके दर्शन करने में भाव आएगा, प्रार्थना भी आ सकती है। तो वहां पर क्या है, वहां पर जब सब लोग एक बार यहाँ पर आए थे, तो बलराम जी वहां पर ना छुप छुप के दूध कटोरा बड़े बर्तन में लेकर दूध पी रहे थे उसको अकेले में। तो उतने में सब ग्वाल वाल आए तो दिखा रहे, बलराम जी अकेले दूध पी रहे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जब खेलने आते सबको बांट के देना चाहिए, अकेले अकेले खाने का क्या मतलब होता है। तो सब लोग झपट पड़े उसके ऊपर, झपट पड़े तो वो दूध बेचारे पी रहे थे, दूध तो का लोटा गिर गया ऐसा हाथ से, तो धार लग गई वहां से ऐसे। अभी धार, अभी क्या होगा, सब कंस्ट्रक्शन कर दिया है, एक ही शिला थी ऐसी पथरीली शिला थी, उसमें से वो धार का निशान यहां से लेकर पूरे लेकर नीचे तक दिखाई पड़ता था। अभी वो नष्ट हो गया बेचारा, क्या है, तो एक एरो लगा के दिखा है कि दूध की धार, ऐसा लिखा है उसके ऊपर, लेकिन वहां पर आप खोदेंगे तो पत्थर के अंदर, वो पत्थर के अंदर इनबिल्ट व्हाइट रंग की धार है। तो इस तरह से जब उनके लोटे से दूध लुढ़का, लोटा लुढ़क गया और दूध आया, तो यहां पर क्षीर सागर कुंड प्रकट हो गया। भगवान को अपने सारे तीर्थों को यहां पर आश्रय देने के लिए कुछ ना कुछ लीला करनी पड़ती है, तो क्षीर सागर भी एक धाम है, इसमें भगवान स्वयं विश्राम करते हैं, शिरोदकशायी विष्णु। तो वो भी शिरोदकशायी विष्णु जो है, वो जो धाम, विष्णु नहीं, क्षीर सागर, दूध का सागर है ना, सात प्रकार के सागर होते हैं, एक तमकीन सागर होता है, गुड़ के पानी का होता है, एक मतलब वो शुगर केन जूस का होता है, एक घी का होता है, एक दही का होता है, एक दारू का होता है, और एक दूध का होता है, ऐसे सात प्रकार के सागर हैं। जो विरजा गोपी के पुत्र बने थे, कृष्ण की गोपी हैं विरजा देवी, उनके सात पुत्र हुए, और सात पुत्रों ने बहुत झगड़ा किया एक बार, और राधा और सॉरी कृष्ण और विरजा देवी के मिलन में बहुत बाधा डाली, बहुत शोर मचा के तंग कर दिया उनको। तो विरजा देवी भगवान के मिलन में बहुत आतुर थी और मग्न थी, तो उनको बार बार डिस्टर्ब किया, इन बार ये मुझे ऐसा कर रहा है, वो मुझे बाल छीन रहा है, वो मुझे दूध नहीं दे रहा है, मुझे वो लड्डू नहीं खाने दे रहा है, करके झगड़े करके बार बार कंप्लेंट करने आ रहे थे। तो विरजा देवी बड़ी परेशान हो गई, और उसने सबको शाप दिया कि तुम लोग साथ में रहते हो ना, तुम झगड़ते हो, तुम सबको मैं जुदा कर दूंगी, तुम सात समुद्र सात द्वीप पर बनोगे, एक लोक पर बनी, एक एक लोक में एक एक समुद्र बनेगा। तो वो सात समुद्र बने सात लोक में, एक लोक में नमक वाला सागर, एक में गन्ने वाला जूस वाला, एक में घी वाला, एक में दूध वाला, एक में दही वाला, एक में ऐसे बना, एक में शराब, सुरा सुरा सागर। तो उसमें से क्षीर सागर जो है धाम है, विष्णु वहां निवास करते हैं, लेकिन वो विष्णु वहां निवास करने वाले जो तीर्थ हैं, उनको भी भगवान के ब्रज धाम में आकर आश्रय लेने की इच्छा रहती है, और भगवान उनको इस लीला के माध्यम से ब्रज में यहाँ पर प्रकट होने की अनुमति देते हैं। ये पूरा दूध का सागर, तो कितना विशाल है देखो ये, अभी हमारे नजरों में खाली झाड़ और कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। अभी आप अभी बुढ़े होकर अपने पोतों को लेकर यहाँ पर आओगे ना, तो ये भी दिखाई पड़ेगा कि नहीं, भगवान की इच्छा से उनकी क्या इच्छा है पता नहीं है। तो चीज़ें यहाँ पर जो निर्माण होती है वो लुप्त भी हो जाती है, फिर कोई संत आता है तो उसको दोबारा प्रकट करता है, जीर्णोद्धार करता है, हमारी नज़रों के लिए बना देता है, जो बन रहा है अभी, और अभी 2 पीढ़ी चलेगी इसकी, लेकिन समय के अनुसार वो नष्ट हो जाता है, लोग उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, महत्तम भूल जाते हैं। हाँ, लोगों को कथा नहीं पता होती है, लोकल लोगों को पता नहीं होती है, वो बच्चों को कैसे बताएंगे। इस तरह से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। आपको और हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। मैं ये कथा यहाँ पर आप बुलाकर क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके हृदय में इस जगह का महात्म्य फिक्स हो जाए और आप भी दूसरों को बता सके। ऐसे नहीं कि आप बताए और सुना और चुप बैठ गए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कभी सुना था मैंने, आपको आज बता रहा हूँ, वैसे आप लोगों को बताइए, ताकि लोग हमारे ब्रज के महात्म्य को और गौरव को जगाए रखें, जागृत रखें और सबके लिए उपलब्ध रखें। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं, आई डोंट नो। हमारे पूरन जी कहाँ हैं? पूरन, हाँ बताऊँ क्या आपकी कहानी? ये पूरन छाता से हैं, ब्रजवासी हैं, इनको मैंने कहा, एक ही बताया, आप छाता से हो ना, मुझे छाता की लीला बताओ बस, और कहीं की जरूरत नहीं। तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ पूरन जी, आप गलत मत समझना। तो पूरन जी गांव गए, उन्होंने अपने बाबा जैसे लोगों को पूछा, चाचाओं को, बाबाओं को, सबको पूछा, फिर दादा जैसे लोगों को पूछा, वो उनके पिताजी वाले पीढ़ियों को पूछा, किसी को भी पता नहीं है कि छाता में क्या लीला हुई भगवान की। फिर वो आए प्रभु जी, सबको पूछा, किसी को पता नहीं है। तो अगर ऐसे होगा, जिस गांव में आप रह रहे हो और जिस गांव में क्या लीला हुई वही आपको ही पता नहीं है, तो मुझे बाहर से आने वाले को कैसे पता चलेगी? वो जब आप बताएंगे तो मैं समझूंगा आपके घर में क्या लीला हो रही है, तो आपको पता है ना, वो जब बताएंगे तो मालूम पड़ेगा, और आपको ही पता नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसी तरह से ये सब सानों की लही महिमा, पहले सानों की महिमा और कथा लुप्त हो जाएगी, फिर वो जगह ही पता नहीं है। अच्छी सीढ़ी है बैठने की, ठीक है बैठ सकते हैं, ऐसा मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सीढ़ी क्षीर सागर कुंड की सीढ़ी है, ये अगर पता नहीं है तो क्षीर सागर कुंड भी नष्ट हो जाएगा। जिसका महत्व आपको है, पता है, उसी को आप शायद मेंटेन कर सकते हो, जिसका महत्व ही आपको पता नहीं है उसको कैसे मेंटेन करोगे आप? मालूम ही नहीं आपको क्या महत्व है इसका। तो फिर अभी इस बहाने मैं आपको छाता की कहानी सुना देता हूं, है ना पूरन जी महाराज, सुना देना, आपके गांव का गौरव कर रहा हूं मैं। छाता का नाम छत्रवन है, और छत्रवन में सभी ग्वाल वालों ने मिलकर कृष्ण को छत्रपति बनाया, राजा बनाया, कि आप ब्रज के राजा हो। बहुत ऐसा भाई, बच्चों में कैसा ना निष्पाप भाव होता है उनका, कोई बड़े सिंहासन की जरूरत नहीं है, अरे तू राजा बन जा, हम तुम्हारे सैनिक हैं, चलो। तो कोई मंत्री बन गया, कोई संतरी बन गया, कोई बन गया, और उनको राजा बना दिया, और एक छतरी ऊपर रख दिया, चलो छत्रपति। तो वन का नाम पड़ा छत्रवन। अभी यहाँ पर मजे ले जा रहे हैं, कन्हैया को छत्रपति बना दिया, सब लोग आनंद उठा रहे हैं, वहां पर एक सभा चल रही है दूसरी गोपियों की, उसमें राधा रानी, छत्रपति बनने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी छत्रपति है वो, हाँ पहले से ही है। तो खबर आती है कि वो जो कला कलूटा बालक है उसको छत्रपति बना दिया इन्होंने। ऐसा ऐसी हिम्मत उनकी, हमारी रानी होते हुए वो छत्रपति कैसे बन सकता है? तो महारानी ने आदेश दिया, जाओ उस झूठ मूठ के नकली छत्रपति को पकड़ के लेके आओ, अरेस्ट करके लेके आओ। तो हमारी गोपियां गई हैं वहां पर, और छत्रपति का आनंद लेते हुए कन्हैया को अरेस्ट करके लेके आए हैं, और राधा रानी के चरणों में गिराया है और पूछा है, बताओ छत्रपति कौन है? उन्हें कहा, आप ही आदरणीय छत्रपति हो, मैं आपका दास हूं। इस तरह से छत्रपति का कालावधि कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। आउट घटकेचे राज्य ऐसा बनता था मराठी में, कुछ क्षणों के लिए कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, 10 मिनट में उसको गिरा देते हैं लोग, वैसे ही कुछ मिनट के लिए बने, कुछ क्षणों में खत्म हो गए, और फिर दास बन गए राधा रानी के। उसी में उनको आनंद है, छत्रपति बनने में उतना आनंद नहीं है जितना दास बनने में है। और कृष्ण भगवान स्वयं छत्रपति का पद त्याग देते हैं खुशी से, और राधा रानी के दास बनते हैं। मन याद करो मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। सब लोग याद करो जिस पर भगवान अपने आप को निछावर कर देते हैं। ऐसा है सुंदर काम्यवन है। यहाँ पर मैंने आपको क्षीर सागर की निर्मिति का कहानी सुनाई, भीमासुर के वध की कहानी सुनाई, भगवान की छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या होता है? छाक उसको कहते हैं जो बीच में खाया जाता है। बीच में किसके बीच में? गौचारण के बीच में। जब वत्सपाल लीला में क्या होता था? ऐसा एक नियम था कि नंद भवन में यशोदा माई कुछ कुछ मिनटों में जाकर ना देखती है कहाँ है, कहाँ तक गया है, और लिमिट क्या है उसका, उसकी नजरों नजर कहाँ तक पहुंचेगी, वो दिखाई पड़ना चाहिए, वहीं पर जाना है, नजरों के ओझल नहीं हो जाना है। वत्सपाल लीला का नियम था। और वत्सपाल लीला में रोज ठाकुर जी दोपहर को घर पे भोजन करने को आते थे। जैसे आपने, कैसे बच्चे होते हैं अभी तो नर्सरी में है, तो कैसे ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं, लंच को घर पे आते हैं, 2 घंटा का स्कूल है, फिर बड़े होते हैं तो जाते हैं, फिर वो शाम को आते हैं, फिर लंच का डब्बा बना के देते हैं आप उनको। तो वैसे वत्सपाल लीला में घर पे आते थे, अभी खेल रहे खेल रहे खेल रहे, गौचारण बच्चों का चारण कर रहे हैं, लंच का समय हो गया है, और वो रोहिणी मैया बुला रही है लेकिन नहीं आ रहे हैं। बोले दीदी आप आ जाओ, दीदी आ रही, बुला रही, डांट रही है, तो फिर जा रहे हैं घर पे। अरे बाबा कब से आके बैठे आप, वो क्या स्ट्रीट बॉयज बन गए हो क्या, सड़क छाप लड़के बन गए हो, कैसे तुम्हारा संस्कार है, चलो बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं, जाओ खाना खाने को, तो फिर डर के मारे आएंगे। ये वत्सपाल लीला का आनंद है। उसके बाद में जब भी वो गोपाल बने तो वो डंडा होता ना, डंडा लकुटी, उसके ऊपर एक झोली, और झोली में दोपहर का प्रसाद, सबका अपना अपना घर का, लटका हुआ था ना ऐसे उधर पीछे लटका हुआ, ऐसे जाते थे वो। और फिर दोपहर को राक्षस को मारने का काम हो गया और रोज राक्षस आया करते थे, एवरी सिंगल डे। वो सब स्टोरी जो बताने के लिए सुखदेव जी को टाइम नहीं था, क्योंकि 7 दिन का समय था, तो मोटे मोटे राक्षस का उन्होंने वर्णन किया, बाकी फिल इन द ब्लैंक। तो रोज दोपहर को राक्षस का वध करने के बाद में जमुना किनारे बैठना है, हाथ पांव धोना है, और ये जो है लटका हुआ खोलना है, और खोल के सबको बांटना है और खाना है। उसके बीच में यशोदा माई भी और कुछ भोजन बना के फ्रेश भेजती थी, और सखियां उसको लेकर ऐसे, कौन से वन में गयो, किस वन में गया, पूर्व में गया कि पश्चिम में गया, ढूंढ ढूंढ के दोपहर के समय में ढूंढ के निकालती थी। अरे जाई तो वन में है ये, तिला कर रोए, तो फिर जाके वो अपना छाक देती थी उनको। तो छाक यानी बीच का भोजन, मध्यान्ह भोजन कह सकते हैं उसको आप। तो ये भगवान का बहुत ही प्रिय छाक लीला का स्थान है। यहाँ पर भोजन करने का बड़ा महात्म्य है, यहाँ पर भोजन अर्पण करने का भी महात्म्य है, और भोजन खाने का भी बड़ा महात्म्य है। तो आमतौर पर हम लोग यहाँ पर सुबह ही आते हैं, ब्रेकफास्ट लेकर आकर यहाँ ही भोग लगाते हैं और यहाँ ब्रेकफास्ट लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि हमको आपको दर्शन बहुत अच्छी तरह से करना था, करवाना था। क्योंकि अगर सुबह पहले यहाँ पे आते ना तो केवल गोविंद जी का दर्शन हो पाता है, क्योंकि यहाँ के सुंदर लीलाएं दर्शन करते करते दोपहर हो जाती है, फिर गोपीनाथ जी कैंसल, 14 सिकम्बा कैंसल, बाकी मदन मोहन जी कैंसल, केवल गोविंद जी करके जाना है, ऐसा होता था। तो आज सोचा कि सारे मंदिरों के दर्शन सब बंद होने के पहले कराएंगे। ये जगह पर तो 24 घंटा दर्शन खुले रहते हैं, बंद होते क्या पट, यहाँ पर कभी भी आओ, रात को भी आकर कथा कर सकते हो, कोई पट बंद होने का काम नहीं है, 24 खुला, गोवर्धन कैसा, गोवर्धन हमारा पर्वत 24 आवर्स ओपन दर्शन रहते हैं वहाँ पर, कभी भी जाओ। सोचा हम लोग यहाँ पर तो आराम से बैठ सकते हैं, इसलिए हमने स्विच ओवर कर दिया, स्वाइप कर दिया उसको, तभी हम शुरू की जगह पर आखिरी में आए हैं, और आते आते हंसते हंसते फिसलते हुए चले जाएंगे घर पे लास्ट में, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। सब प्रकार के आतंक जो है उसका निवारण भगवान ही करते हैं। एक बार एक राक्षस जो है वो बचरा बन के आया था, वत्सासुर, उसको भगवान ने पहचान लिया। देखो कैसे भगवान की लीला है, भगवान के पास करोड़ों बछड़े हैं, कचोड़ों करोड़ों बछिया हैं, लेकिन फिर भी उसमें से उस बच्चे बछड़े को भगवान ने पहचान लिया, ये बछड़े को हम सुबह लेके नहीं आए थे। देखो कितना उनका ध्यान रहेगा, हर एक बछड़े बछिया को जानते हैं वो, कि ये हमारा है, ये इनके घर से आया है, ये इनके घर से आया है, सबको पहचानते हैं। और सुबह मेरे साथ कौन निकला था, कौन एबसेंट है, कौन प्रेजेंट है, ये भी पता है उनको। लेकिन सुबह जितने आ गए हैं उसमें ये नहीं था, और बलराम को बता रहे, देखो उसकी आंखें देखो, ये बछड़ा है ना, इतनी कोमल आंखें नहीं उसकी, बहुत भयंकर लाल लाल आंखें हैं उसकी, वो आक्रमण करने वाला है हमारे ऊपर, तो पीछे से जाकर भगवान ने दो पैर से उठाकर उसको पटक के मारा है। तो कोई बचरा बन के आया है, कोई ग्वाल बाल बन के आया है। प्रलंबासुर भी ग्वाल बाल बन के आया था, अपोजिट पार्टी में, कृष्ण के अपोजिट पार्टी में था वो, नहीं बल कृष्ण के पार्टी में था, बलराम के अपोजिट पार्टी में था। कृष्ण की पार्टी हार गई तो बलराम की पार्टी को सर पे लेके चलना था, कंधे पे लेकर, तो ये प्रलंबासुर जो है ग्वाल बाल बना हुआ बलराम जी को लेके चला गया। प्रभु जी ने कथा कथा बताई परसों, एक थोड़ा उसमें एक एक्सटेंशन पार्ट है, मैं बताऊंगा आपको, बहुत रोचक पार्ट है। ये प्रलंबासुर जो है ना, ये भांडिर वन में आया था। भांडिर वन जो है वो भगवान का विवाह वहां पर हुआ राजा रानी के साथ, और भांडिर यानी भंडारा, वहां पर हमेशा भंडारे चलते रहते हैं। तो वहां पर ये प्रलंबासुर आया, तो भगवान ने उसका वध, मतलब बलराम जी के ऊपर, बलराम जी को लेकर वो चलने लगा ना, तो जैसे बताया गया था कि यहाँ तक घुमाना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, अच्छी तरह लेना है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग कट में गया। कहते हैं वो बलराम जी को लेकर बहुत दूर चला गया उत्तर दिशा में। भांडेरवन तो कहाँ का रह गया, भांडेरवन गया, वृंदावन भी क्रॉस किया उसने, जमुना भी पार किया, उत्तर दिशा में इतना दूर चला गया वो, एकदम दूर चला गया। तब जाके बलराम जी को ध्यान में आ रही, क्या लेके जा रहे हैं मुझे, तब पता चला कि ये बाल वाल बाल नहीं है, राक्षस है ये। तो फिर उन्हें तुरंत एक सर पे मुक्का मार दिया, मतलब इतना सा बालक बलराम जी, इतना बड़ा राक्षस, लाल रंग के बाल वाला, भयंकर दांत वाला, लाल लाल कोयले जैसी आंखें वाला, सब भयंकर राक्षस, उसको मुक्का मार सर पे मार दिया। और जैसे वज्र का आघात होने पर पर्वत से ज्वालामुखी निकलती है, ज्वाला रस निकलता है बाहर, वैसे उसके मुंह सर फट गया और उसमें खून बहकर उसने प्राण त्याग दिए। वो जगह का नाम है पलवल, और पलवल का, पलवल तो अपभ्रंश है, पलवल का सही नाम क्या है, प्रलंब वधस्थल। इसका मतलब ब्रज जो है ना वो वहां तक फैला हुआ है। आगरा में अग्रवन, हाथरस में गोपी से उठाकर खाया था, ये सब एक्सटेंडेड ब्रज के अंदर ही आता है। तो ये बात कल मुझे कहनी थी, मैंने कह नहीं पाया। तो पलवल जो है ना आपका, पलवल जो दिल्ली के रास्ते में हमेशा बात करते रहे, पलवल पहुंच गो, आओगे, आ जाएगो, आ जाएगो, 2 घंटा में आ जाएगो, वो पलवल जो है वो प्रलंब वध स्थल है। वहां से प्रलंब का वध करके बलराम जी लौट के आए हैं। लेकिन सुखदेव जी कहाँ तक बताएंगे, समय कितना कम था उनके पास, लिखा उसका वध कर दिया बस। तो ये अलग अलग प्रकार के, कभी घोड़ा बनकर आया, कोई बैल बनकर आया, कोई अजगर बनकर आया, कोई बगुला बनकर आया, कोई भयंकर स्त्री जो है वो सुंदर कन्या बनकर आई, कोई छकड़ा बनकर आया, मतलब बैलगाड़ी बनकर आया, कोई हवा बनकर आया, क्या कहते हैं उसको, भवरा, क्या क्या रूप थे राक्षस के, माय गुडनेस, सो डिफिकल्ट, भयंकर राक्षस के रूप थे ऐसे, लेकिन सबका भगवान ने उद्धार कर दिया, सबका उद्धार किया, उनका कल्याण किया और हमारा भी कल्याण किया उनके साथ में। ये सुंदर लीला जो है किसी भी भगवान के अवतार ने नहीं की है, किसी भी अवतार ने की। तो हम सब लोग यहाँ पर भगवान का आश्रय लेने के लिए आए हैं। ऑल ऑफ अस हैव कम हियर टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, हृदय से उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए हम लोग आए हैं। कितना सुंदर समय है, देखो इतना शांत समय है, एकांत है, कोई शोर नहीं है, सुंदर मंद मंद शीतल हवा बह रही है, पूरे ब्रज का अनुभव आपको भगवान दे रहे हैं, इसलिए इतना दूर आपको लेके आते हैं। क्योंकि आत्मा के लिए इंद्रियों के माध्यम से दिव्य अनुभव होना चाहिए। हम लोग कितना भी प्रवचन करेंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतने पवित्र तो है नहीं, खाली रटते हैं कथा, लेकिन पवित्र जगह पर आकर वहां की कथा जब करेंगे ना, तो वहां का धाम ही आपको वो कथा सुना रहा है अपने प्रभाव से, और उसका दिव्य प्रभाव आपके आत्मा पर हो रहा है, और उस तरह से आपको इस ब्रज का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, आंखों से, कानों से, त्वचा से, नाक से, हर प्रकार से आपको ब्रज आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपके आत्मा में विराजमान होकर वो ब्रज आपके घर जाएगा। इसलिए इतना प्रयास करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इधर से उधर कैसे घुमाना है, किस जगह कहाँ ले जाना है, कौन सा सुरक्षा रहेगा, कौन सा भीड़ कम वाला जगह रहेगा, कौन सा इजी रहेगा, कहाँ पर बहुत देर बैठ सकते हैं, कहाँ पर जल्दी निकलना है, ये सारा योजना क्यों बनाते हैं, ताकि हम सबको एक तीव्र उत्कट हृदय वाला अनुभव प्राप्त हो जाए, तब जाकर उस हृदय वाले अनुभव में कृष्ण विराजमान होंगे और आपके घर आएंगे आपके साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।